अरुणिमा घर से बाहर निकली और उसके पीछे आस्तिक भी निकल गया। अरुणिमा के हाथ में साबुन और तौलिया था। आस्तिक ने अपने दोनों हाथ बांधे हुए रखे थे। हालांकि उसका बिल्कुल भी मन नहीं था यहाँ फ्रेश होने का, लेकिन इस वक्त वो भी खुद को बहुत अनहाइजीनिक महसूस कर रहा था। कल पूरी रात वो मच्छरों के बीच सोया था, ऊपर से मिट्टी की चिपचिपाहट उसे अजीब लग रही थी। वैसे भी आस्तिक को सुबह सुबह फ्रेश होने की आदत थी। अरुणिमा आगे आगे चल रही थी और आस्तिक उसके पीछे दो कदम दूरी बनाए हुए था। दरअसल वो अपनी घूरती हुई निगाहों से गांव के लोगों को देख रहा था। गांव की औरतें सिर पर पल्ला डालकर, कुछ पल्ले के नीचे से और कुछ आधा उठाकर तिरछी निगाहों से आस्तिक को देख रही थीं और साथ ही खुसुरफुसुर भी कर रही थीं। गांव के मर्द जो या तो खेत पर जा रहे थे या फिर वहां से लौट रहे थे, वो भी आस्तिक और अरुणिमा को देख रहे थे। आस्तिक मन ही मन बुदबुदाया, हम इन्हें जोकर नजर आ रहे हैं जो ऐसे घूर घूर कर देख रहे हैं। अरुणिमा उसे बाथरूम के पास ले आई। दरअसल ये एक छोटा सा बाथरूम था जो गांव की महिलाओं के नहाने धोने के लिए बनाया गया था। पुरुषों का क्या है, वे तो कहीं भी खड़े होकर नहा लेते हैं और कहीं भी, लेकिन महिलाओं के लिए ये समस्या थी, इसलिए गांव की सारी महिलाओं ने मिलकर अपने लिए एक सुविधाजनक बाथरूम बनवाया था। अरुणिमा ने बाथरूम के पास साबुन और तौलिया रखते हुए कहा, आस्तिक जल्दी नहा लो वरना पानी चला जाएगा। वो जाने ही वाली थी कि आस्तिक ने उसका हाथ पकड़ लिया। अरुणिमा चौंक गई और उसने इधर उधर देखा। आस्तिक ने धीमे से कहा, तुम यहीं रहो ना जब तक मैं फ्रेश हो जाऊं, प्लीज मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। अरुणिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, इसमें अजीब क्या है, जाओ अंदर और फ्रेश हो जाओ। आस्तिक की नज़र उन औरतों पर पड़ी जो अब भी घूंघट के अंदर से उसे ताड़ रही थीं। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम जानती हो अरुणिमा, मैंने आज तक बहुत सी लड़कियों को आधे कपड़ों में देखा है और बहुत सी को तो बिना कपड़ों के भी, लेकिन उन सब के सामने मुझे लगता था कि मैं पावर में हूँ, पर यहाँ इन गांव की औरतों के सामने मुझे अपनी इज्जत पर खतरा मंडराता हुआ लग रहा है। ये लोग सिर्फ निगाहों से ही मेरा चीरहरण कर रही हैं, अगर हाथ लग गया तो 100 ग्राम बांट के घर ले जाएंगी। अरुणिमा को उसकी बातें सुनकर हल्का सा झटका जरूर लगा, क्योंकि वो जानती थी कि आस्तिक ने बहुत सी लड़कियों के साथ फिजिकल रिलेशन रखे हैं, लेकिन साथ ही उसे आस्तिक की बातों में हैरानी भी महसूस हुई। मतलब आस्तिक इन भोली भाली औरतों से घबरा रहा था। वैसे देखा जाए तो वो गलत भी नहीं था, क्योंकि ये औरतें उसे वाकई बहुत अजीब तरह से देख रही थीं, बिल्कुल आंखें फाड़कर बिना पलक झपकाए। अब तो अरुणिमा को भी अपने पति की इज्जत पर खतरा महसूस होने लगा था। उसने आस्तिक से कहा, कोई बात नहीं आस्तिक, तुम अंदर जाओ नहा लो, मैं यहीं हूँ। आस्तिक का नहाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन मजबूरी थी। वो बाथरूम के अंदर गया, लेकिन जैसे ही उसने अंदर का नज़ारा देखा, एकदम से चिल्ला पड़ा। तुरंत दरवाज़ा खोलकर बोला, अरुणिमा शावर कहाँ है? अरुणिमा को इतनी जोर की हंसी आई कि वो खुद को रोक नहीं पाई। हंसते हुए उसने कहा, आस्तिक ये छोटा सा बाथरूम है, यहाँ तुम्हें कहाँ से शावर मिलेगा? यहाँ शावर नहीं है, तुम्हें बाल्टी और मग से नहाना पड़ेगा। वो देखो नल, उसमें से पानी निकलेगा। आस्तिक का मुंह खुला का खुला रह गया, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। ऐसा नहीं था कि उसके घर में नल नहीं थे, लेकिन वहाँ सब कुछ ऑटोमेटिक और यूनिक डिज़ाइन का था। इस तरह के पुराने लोहे के नल उसने पहली बार देखे थे। उसने बड़ी बड़ी आंखों से अरुणिमा को देखा। अरुणिमा फिर मुस्कुराई और बोली, आस्तिक नल चालू करोगे तो उसमें से पानी निकलेगा, फिर बाल्टी भर लो और मग से नहा लो। आस्तिक बहुत ही अजीब सा मुंह बनाते हुए माहौल को देख रहा था। अब ना चाहते हुए भी उसे ये करना ही पड़ेगा। वो अंदर जाने से पहले एक बार फिर रुक जाता है और अरुणिमा से कहता है, लेकिन मैं ब्रश किससे करूँगा? तुम जानती हो ना, बिना ब्रश किए मैं कुछ खाता पीता नहीं हूँ। अरुणिमा ने हंसते हुए कहा, दादी ने इसका भी बंदोबस्त कर रखा है, लो तुम इससे ब्रश करो। ऐसा कहते हुए अरुणिमा आस्तिक के हाथ में एक दातुन पकड़ा दिया। अपने हाथों में लकड़ी का टुकड़ा देखते हुए आस्तिक की दोनों पुतलियां एक साथ नाक के पास आ जाती हैं और वो एकदम हैरान हो जाता है। ये किस तरह का ब्रश है? मैंने तो ऐसा ब्रश कभी देखा भी नहीं, और इसमें ब्रश कहाँ है? आस्तिक ने वो दातुन अरुणिमा को दिखाते हुए कहा, इससे कैसे ब्रश करूँ? ये कैसा ब्रश है? बहुत अजीब सा, बिल्कुल लकड़ी जैसा लग रहा है। इसे चार्ज करना पड़ता है क्या? अरुणिमा की इतनी तेज हंसी छूटती है कि वो अपने दोनों हाथों से मुंह ढककर हंसते हुए बोली, नहीं आस्तिक, इसे चार्ज नहीं करना पड़ता, इसे दातुन कहते हैं। ये नीम के पेड़ की टहनी है और तुम्हें पता है ये बहुत ही हाइजीनिक ब्रश है। मतलब शहर के वे केमिकल वाले ब्रश जो काम नहीं कर सकते, वो ये लकड़ी का टुकड़ा कर सकता है। और ये बात तो हमारे वेदों और ग्रंथों में भी लिखी गई है कि दातुन से दांत साफ करना बहुत फायदेमंद होता है। इससे ना तो मुंह में दुर्गंध होती है और ना ही दांतों में कोई बीमारी। तभी तो हमारे पूर्वज बिना किसी दांत और मसूड़ों की बीमारी के पूरे 32 दांत लेकर 80 साल की उम्र तक बैठे रहते थे। और हमें देख लो, 30 के होते नहीं कि दांतों में दर्द, मसूड़ों में दर्द, जबड़े में दर्द और ऊपर से कैविटीज अलग से, और 36 बीमारियां भी। इसीलिए मैं तो कहती हूँ कि हमें वापस जाकर भी दातुन का इस्तेमाल करना चाहिए। आस्तिक मुंह बनाते हुए अरुणिमा को देखकर बोला, तुम ही करो अपने ये पेड़ पौधों से दांत साफ,
मेरा जैसा है वैसा ही ठीक है और मुझे नहीं करना इस दातुन से अपने दांत साफ। ये कहते हुए आस्तिक ने जल्दी से बाथरूम का दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन अरुणिमा ने दरवाजे के बाहर से कहा, लेकिन आज तुम अपने दांत कैसे साफ करोगे? और बिना दांत साफ किए तो तुम कुछ खाओगे भी नहीं ना। मैं तो कहती हूँ छोड़ दो जिद, बहुत अच्छा है ये दातुन, तुम्हारे दांत पूरी तरह से साफ कर देगा। तुम्हें कुछ नहीं करना, बस आगे के हिस्से को थोड़ा थोड़ा चबाकर ब्रश की तरह बनाना है और फिर अपने सारे दांतों पर घुमाना है। देखना, दो मिनट में सारे दांत शीशे की तरह चमक जाएंगे। तभी एकदम से दरवाजा खुलता है और आस्तिक झटके से अरुणिमा के हाथों से वो दातुन छीनकर दोबारा दरवाजा बंद कर लेता है। अरुणिमा की फिर से हंसी छूट जाती है। वो पास की ईंटों के ढेर पर बैठ जाती है और आस्तिक के नहाने का इंतजार करने लगती है। अंदर से पानी चलने की आवाज आ रही थी। आस्तिक नहा रहा था। उसने नहाते हुए पूरे बदन पर साबुन लगा लिया था और अपना चेहरा पूरा साबुन से भर लिया था। ये पहली बार था जब वो साबुन से नहा रहा था, वरना उसे बॉडी वॉश की आदत थी। पर जो भी हो, आज के लिए उसे एडजस्ट तो करना ही था। लेकिन जैसे ही उसने पूरे बदन पर साबुन लगाकर खुद के ऊपर पानी डालना चाहा, अचानक से नल से निकलने वाला पानी बंद हो गया। आस्तिक के पूरे बदन और मुंह पर साबुन लगा हुआ था। वो इधर उधर हाथ मारते हुए पानी ढूंढने लगा। जब उसे पानी गिरने की आवाज भी आनी बंद हो गई तो वो एकदम से चिल्लाया, अरुणिमा पानी कैसे बंद हो गया? बाहर बैठी अरुणिमा उसकी आवाज सुनकर चौंक गई। उसने जल्दी से कहा, क्या पानी बंद हो गया? लगता है पानी चला गया। कोई बात नहीं, तुमने बाल्टी तो भर रखी होगी ना, उसी से नहा लो। आस्तिक की आंखें बंद थी और पूरा मुंह साबुन के झाग से भरा हुआ था। उसने हाथ लगाकर बाल्टी ढूंढनी चाही तो उसे बाल्टी एक कोने में दिखी, लेकिन वो पूरी हल्की थी। इसका मतलब था कि वो खाली थी। उसने छुंचलाते हुए कहा, अरे यार, इसमें पानी नहीं है। लगता है मेरे हाथ लगने से बाल्टी साइड हो गई होगी और सारा पानी फर्श पर गिर गया। अब यहाँ एक बूंद पानी भी नहीं बचा। अरुणिमा कुछ करो यार, मैं नहाऊंगा कैसे? अरुणिमा घबराकर इधर उधर देखने लगी और बोली, आस्तिक फिक्र मत करो, मैं कुछ करती हूँ। लेकिन अंदर से आस्तिक झुंझलाते हुए चिल्लाया, अरे यार जल्दी कुछ करो, मेरी आंखें जल रही हैं और मेरी पूरी बॉडी पर साबुन लगा हुआ है।
तभी वहाँ वही चाचा आ गई जिन्होंने आस्तिक को फाइयू कहा था। वे अरुणिमा से पूछती हैं, क्या हुआ बिटिया, काहे परेशान हो रही हो? अरुणिमा ने चाचा को देखा और कहा, चाचा मेरे पति अंदर हैं और पानी चला गया है। उनके मुंह पर साबुन लगा हुआ है, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उन्हें पानी कहाँ से ला कर दूँ। चाचा ने तुरंत कहा, अरे बस इतनी सी बात, ये भी कोई परेशानी वाली बात है क्या? तुम एक काम करो, अपने मर्द को मेरे घर के पास ले चलो, वहाँ कुआं है। इसके बाद चाचा अपने घर की तरफ मुंह करके चिल्लाई और एक दूसरी औरत को देखकर बोली, अरे ओ राजू की अम्मा, जरा कुएं से एक बाल्टी पानी तो भर के रखना, शहरी बाबू को नहाना है।